इच्छा के बिना क्रियाओं का लेप नहीं लगता है। जैसे आंख के पोपचे चलते हैं तो इसका लेप नहीं लगता, श्वास श्वास चलता है और कई जीवाणु मरते हैं, इसका पाप नहीं लगता। लेकिन सुख भोगने से, सुख की इच्छा से जो क्रिया की जाती है उसमें प्राणी बंधता है। और कोई भी दुख बिना सुख के, भोग इच्छा के, कोई भी दुख जन्म नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति जितना भी दुखी दिखता है उसके मूल में सुख की इच्छा ही दुख का सिंचन करती है। दुख रूपी गोखरू को इच्छा रूपी पानी ने ही पोषा है। इच्छा सुख की होती है और वह सुख की इच्छा जगत में सत्य बुद्धि और व्यक्तित्व के श्रृंगार में, व्यक्तित्व के सर्जन में जब तक सत्य बुद्धि बनी रहेगी तब तक बुद्धि का चमत्कार पैदा नहीं होगा। जानते हुए भी भीतर से सुकड़े रहेंगे और जब तक किसी से तुम प्रभावित होगे तो उसका राज्य तुम पर होगा। जय जय। और तुम तब तक प्रभावित रहोगे ही जब तक तुम्हारा अपना व्यक्तित्व मिटाने को तुम तैयार नहीं कि बापू आ तो तुम्हें बता शिष्य विष्ण छूटा करें ना कुछ को, हमें किसी को, हमें अपने व्यक्तित्व की जरूरत नहीं तो दूसरे के व्यक्तित्व को संभाल कर क्या करेंगे। जय जय। इसी में तो संतों की और शास्त्रों की सार्थकता है गरिमा। क्रियाओं का और दीनता का जन्म होता है, ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म बातें। व्यक्तित्व के सर्जन और श्रृंगार से क्रियाओं का और दीनता का जन्म होता है। व्यक्तित्व के विसर्जन मात्र से दीनता, हीनता और कर्तृत्व, भोक्तृत्व खत्म हो जाता है। फिर उसे क्रिया करने की अपने लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है वो विश्व के काम आने के काबिल हो जाता है। जय राम जी। और जो विश्व के काम होने, काम आने के काबिल है वो विश्वेश्वर का ही तो स्वरूप हो जाता है, विश्वेश्वर से अभिन्न हो जाता है। बात बहुत सूक्ष्म है। भोग में भोक्ता का इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और पदार्थों के साथ तादात्म्य करता है, तभी भोक्ता को सुख होता है। लेकिन ऐसा कोई भोक्ता नहीं मिलेगा जो सुख का भोगी दुख का शिकार न बना हो। सुख का भोगी दुख का शिकार न बना हो ऐसा कोई भोक्ता नहीं मिलेगा। चाहे फिर उसको समाज मर्यादा के अनुकूल भोग मिले, स्वपत्नी हो और शास्त्र पद्धति के अनुसार भोग भोगता हो, स्व उपार्जित धन हो, स्व मकान हो, स्वपति स्वपत्नी स्व संतान अपना स्वत्व वाला हो, किसी से छीना झपटी न हो, ब्लैकमेल नहीं किया हो, ब्लैक का पैसा न हो, मान लो, अथवा किसी को फुसलाकर भोग नहीं भोगा हो, ऐसा भी अगर भोगता है फिर भी भोग भोगने से भोगता की शक्तियों का ह्रास हुए बिना नहीं रहेगा। तो भोग में भोगता की शक्तियों का ह्रास होता है और भोगता भीतर से तुच्छ होता जाता है, ज्ञाता से दूर होता जाता है। जय जय। योग में क्या होता है कि योग में भोक्ता इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठ जाता है। योग में भोक्ता ज्ञाता के करीब होता है। यूं कह दो कि योग से भोक्ता परमात्मा के करीब होने के कारण भोक्ता की योग्यताएं खिलती है, चमत्कार पैदा होता है। योग से शक्ति का संचय होता है और भोग से शक्ति का विनाश होता है। भोग क्षणिक हर्ष पैदा करके पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता ले आता है। योग व्यक्तित्व को बाधित करने में, योग भोग की इच्छाओं को दूर करने से जन्म होता है और योग का जन्म होते ही भोक्ता ज्ञाता के करीब होता है, लेकिन भोक्ता की परिच्छिन्नता वहां भी बनी रहती है। ज्ञाता के करीब आने से भोक्ता में अतुलित बल आने लगता है, अतुलित योग सामर्थ्य आने लगता है, आकर्षण आने लगता है, रिद्धि सिद्धि आने लगती है। फिर भी भोक्ता को जब तक अपने से अभिन्न ज्ञाता का ज्ञान नहीं होता, तब तक भोक्ता की महदूदी बनी रहती है, सीमा बनी रहती है। तो भोक्ता जब योग में आता है तो सुखी रहता है, और अगर उत्थान होता है तो फिर उसका वो सुख, निर्विकारी सुख से वो दूर हो जाता है। अगर भोक्ता को ब्रह्मवेता गुरुओं का ज्ञान मिल जाए तो वो भोक्ता विषय भोग से उपराम होता होता योग में आ जाए, और योग से भी एक ऐसी ऊंची अवस्था है कि जिसको ज्ञाता कहते हैं, वो अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान पाए। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान उसको हो जाने पर उसकी स्वाभाविक ही भोग और योग दोनों से उपरांता हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अभी आंखें बंद करने का समय नहीं है। उसकार अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो भोक्ता का भोग और योग दोनों समाप्त हो जाता है। भोक्ता को फिर योग भी नहीं करना पड़ता है, भोग भी भोगने की रुचि नहीं रहती। योग भोग जाको नहीं सो विद्वान अरोग, जिसको योग और भोग दोनों से जो ऊपर चला गया वो ठीक निरोग है। फिर उसे अपने लिए कुछ नहीं करना, तो उसके द्वारा जो कुछ होगा वो समष्टि के लिए, और समष्टि व्यष्टि व्यवहारिक काल में समझाने भर को है, वो विश्वात्मा हो जाएगा। हम अगर इंद्रियों के पक्ष में होते हैं तो जीवात्मा और जंतुओं की लाइन में चले जाने का सामान इकट्ठा करते हैं, और हम जब ज्ञाता के पक्ष में आने लगते हैं तो विश्वेश्वर के स्वरूप के साथ अभिन्न होते हैं। देखो कितना महंगा सौदा है, जरा सा इधर झुके तो अति तुच्छ वृक्ष कीट पतंग मेढकों की योनि में जाने की तैयारी, और जरा सा विवेक के तरफ आ गए, सत्संग के तरफ आ गए तो श्री कृष्ण का अनुभव वो हमारा अनुभव हो जाएगा, राम जी का अनुभव वो हमारा अनुभव होगा, शिव जी का अनुभव वो हमारा अनुभव होगा, जगदम्बा का अनुभव वो हमारा अनुभव होगा। हालांकि ये अनुभव भी समझाने भर को है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सारे के सारे अनंत अनंत लोकपाल भी तुम्हें अपने ज्ञाता स्वरूप में ही दिखेंगे, तुमसे वो अलग नहीं रह सकते, तुमसे वो अलग नहीं रह सकते और तुम उनसे अलग नहीं हो। तो अनंत अनंत लोकपाल लोकेश्वरों और आप में अभिन्नता का जो वास्तविक ज्ञान वो स्वरूप हो जाए।
फिर हम लोग करते ही होंगे, कोई को ठेकरा थे को नहीं। તમને જેટલી શાંતિ કરાવશે એટલું હશે, પૂજા મારત રહેવા વાળા લોકોને
મુલાકાત છે. ભ્રાંતિ પેદા હો, અશાંતિ પેદા હો, દેશ દેશાંતર લોક લોકાંતર મેં ભગવાન કી કલ્પના હો, એસે કરો તો પ્રણામ ભી નહીં કરના છે. મરને કે બાદ ભગવાન મિલેગા, ફલાની જગહ હૈ, અબ એસા કરો વૈસા કરો, સચ્ચે કરો તો બોલેંગે
તેરે દિલ મેં તેરે પાસ ખજા. वो तो और दूर कर लेते, मूर्ख गुरु लोग कहते ना मूर्ख गुरु, तो ईश्वर से और दूर कर देते बेवकूफ. आम करो ना देवी नी उपासना करो ना गणपति नी करो ना नहीं करो, नहीं समझे. मूर्ख गुरु तो भगवान से और दूर कर देते.
ओके, हम ब्रह्मास्मि की कल्पना करके लोग कल्पना का सुख लेते हैं. देखो जी, हम जैन है ये भी कल्पना है, हम सिंधी है ये भी कल्पना है, हम गुजराती है ये भी कल्पना है, हम मनुष्य है ये भी कल्पना है. इन सब कल्पनाओं को काटने की कल्पना का नाम है अहम ब्रह्मास्मि, जय राम जी की. तो छोटी छोटी कल्पनाएं कट गई तो अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना कल्पना नहीं रहती ही, अपना ब्रह्मत्व छलकने लगता है. और मस्ती में आ जाते हैं तो वो कोई मस्ती विषयों की नहीं होती, कल्पनाओं की नहीं होती, लेकिन सारी कल्पनाओं को जहां से मस्ती मिलती है वो छोड़ हाथ में लग जाता है. इसलिए रामतीर्थ बोलते थे कि जो सदैव देह में देह हूं ऐसा चिंतन करता है वो अभागा देहधारी रहता है. जो मुश्किल का चिंतन करता है उसके ऊपर मुसीबतें और मुश्किलें आती, लेकिन जो गुलाब के फूल की नाई मुस्कुराता रहता और आनंदित शिवो हम और ब्रह्मानंदो हम का गीत गाता है वो शिव स्वरूप हो जाता है. जैसा चिंतन करता है ना, हम है तो चैतन्य, लेकिन चिंतन करा जीवत्व का तो जीव हो गए. चिंतन करते करते दृढ़ हो गया ना, नाम का भी तो चिंतन दृढ़ हो गया. ये भी तो कल्पना है, आसाराम फलाना भाई मलुकचंद गोबर भाई गणेश भाई मफुतलाल छनालाल, ये भी तो सब कल्पना है. तो दो साधु जा रहे थे, एक मियां भाई था और एक सन्यासी था. नारायण हरि करत भिक्षा मिली है, लड्डू पूड़ी है. वो मियां भाई ने देखा कि तो काफरों का है, अपने वाला का तो है नहीं. सन्यासी ने तो खा पी के अपना विनियोग करके पूरा, उसने तो कुत्तों को दे दिया. अब लगी भूख, रात को सर्दी के दिन करवटे खाने लगा. 12 बज गए, उठा और मन ही मन उसने अपना खिचड़ी बनाई, कल्पना की बनाई कढ़ी, और फिर खूब धमाधम करके खाने लगा जैसे बंगाली लोग खाते हैं. और महाराज आ गया, हरा मृत सुसराटे लेने लगा. आ, 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 अरे पानी पानी पानी, तो पानी पानी बोला तो उसको सन्यासी जगा. मैं बोला क्या बात है मुला जी, क्या बात है. अरे कड़ी खाया उसमें मिर्च आ गई. कड़ी कौन दे गया. बोले दोए तो कोई नहीं गया, कल्पना की बनाई थी खिचड़ी और कड़ी बनाई, उसमें हरी मिर्च डाली. बोले पागल बेवकूफ कहीं के, जब कल्पना का ही खाना तो देसी घी के लड्डू क्यों नहीं बनाना. कड़ी और उसमें मिर्ची और फिर हाय हाय करना. तो तुम्हारी कल्पना जहां से उठती वो है ब्रह्म. तो मैं गुजराती हूं, मैं दुखी हूं, ये मुश्किल है, मैं परेशान हूं, मैं पापी हूं, ये कल्पना की अपेक्षा मैं ब्रह्म हूं ये कल्पना करो, तो वो कल्पना तुमको जहां से कल्पना उठती वहां पहुंचा देगी. कल्पना तो है शुरुआत में, ब्रह्म की भी तो भावना करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती, इसमें कोई दो मत नहीं. दो प्रकार के वेदांत में भ्रम दिखाए बताए, एक होता संवादी भ्रम, दूसरा होता विसंवादी भ्रम. बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी चिंता है, दहेज देने के लिए रुपया एक नहीं, 10-20 हजार रुपया कम से कम हो, ऐसी चिंता में ग्रस्त खड़ा है. एक साधु आ रहे, नवधारा ना आधार साधु महाराज, ये भी तो कल्पना है. नवधारा ना आधार मारा बाप जी, साचा संतों ने वंदन प्रेम थी रे. कोई संत देखा हृदय उसका भर आया. संत के पास फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन संत के लिए मान था, संत को देखकर उसकी कल्पना चलकी, श्रद्धा की किरण। बाबा जी छोकरी बड़ी हो गई, मेरे पास कुछ नहीं ऐसा है। बाबा बोले हम तो बेटा त्यागी है, हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात, हम कुछ दिन पहले इसी रास्ते से गुजरे थे और कोई ऐसा कोई चमकता हुआ हीरा था, कोई पत्थर था, कुछ था, हमने एक छोटा सा ठीकरे से ढक दिया। यहाँ से ठीक एक माइल चल और फिर बड़का वृक्ष आता है, उससे फिर दाएं चल, दाएं थोड़ा सा चलेगा तो एक पीपल का पेड़ खड़ा है, फिर थोड़ा बाएं चल एक तालाब है, तालाब के ठीक पूरा होते ही एक छोटा सा ठीकरा पड़ा होगा, उस ठीकरे के नीचे हीरा पड़ा है, ले ले जाए। अब भूखे को एक चपाती रोटी भी मूल्यवान लगती है, प्यासे को एक गिलास पानी भी बहुमूल्य लगता है, निर्धन को एक हीरा। और चला अंधेरी रात, कल किसने देखी, अभी से चलो, थाना साथ में लिया, एक माइल चला, फिर वो पीपल का पेड़ आया, फिर थोड़ा चला, फिर बड़का आया, फिर पीपल का आया, फिर तालाब भी आया छोटा सा, दूर एक झोंपड़ी थी और झोंपड़ी की दरार से एक प्रकाश का कोई किरण कहीं पड़ रहा था प्रकाश का किरण, तो वो उधर को चल दिया, शायद वही हीरा हो। तो ये तो देखा कि झोपड़ी का दरार से निकलता है किरण, वो है हीरा की कल्पना से वहां पहुंचा, फिर देखा कि उसके पास में वो ठीकरा पड़ा है, दे मारा और हीरा मिल गया। तो संवादी भ्रम था, हीरे के करीब ले गया वो, संवादी भ्रम धन के करीब ले गया वो, तो उसको प्रकाश को जरा सी किरण को वो समझता था हीरा है, लेकिन हीरे के करीब का उसको बोलते संवादी भ्रम। और संसार में क्या है, विसंवादी भ्रम है, सुख नहीं है और सुख की कल्पना करके जिंदगी बर्बाद कर देते। पत्नी सुखरूप भासती है, सत्ता सुखरूप भासती है, लेकिन उसके पीछे सारी जिंदगी का सत्व तपस्या इज्जत आबरू नीचो देते, अंत में कोई सुख नहीं। अभी लोग कल्पना थी ना, कुछ राजसत्ता मिले, कुछ ये मिले, ये मिले सुख, लेकिन ये सुख विषमवादी हो गया। हमने भी कल्पना की गुरुदेव मिले, किसी ने कल्पना की कि कोई मिनिस्टर नेता मिले और हमको मिनिस्टर बनाए, हमने कल्पना की कि गुरुदेव मिले और हमको गुरु बना दे, तो हमारी कल्पना जो थी वो उसने हीरा दे दिया और उनकी कल्पनाओं ने जख मारने का दे दिया। तो राजा बनकर सुखी होने की भी एक कल्पना है और भगवान को पाकर सुखी होने की भी शुरुआत में तो एक कल्पना ही है, लेकिन ये कल्पना शाश्वत के गीत गुंजा देती और वो कल्पना वो माया के धके में धकेल देती, ठीक है ना। तो और कल्पनाओं की अपेक्षा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म को देखा नहीं, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये कल्पना ही करनी पड़ती बच्चे को शुरुआत में, लेकिन वो कल्पना करते करते लिखते जाता है, फिर उसके विषय में गति करते जाता है तो उसके तत्वों को समझ लेता है। ऐसे ही हम ब्रह्म है, झूठ मूठ में भले तुमको अंदर से न भी विश्वास हो, तभी भी मानते जाओ धीरे धीरे, तो दूसरी मान्यताएं कमजोर होती चली जाएगी। और हम ब्रह्म कैसे हैं इस विषय को जरा समझने की गति आ जाएगी, ब्रह्म तो तुम वास्तविक में हो, जीवत्व की कल्पना उड़ जाएगी। तो जीव भाव की कल्पना, जातवाद की कल्पनाओं ने हमारे ब्रह्म सुख को दबा रखा है। अब वो हीरा जो था कुंडा से ठिकरी से ढका था, तब तक लालटीन की जरूरत थी, अब देख मारा डंडा, अब हीरा को देखने के लिए लालटीन को खोलने की जरूरत थोड़ा है, अब तो हीरा स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही जब तक बोध नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तब तक भावना करो, कल्पना करो, हम ब्रह्म है, हम असंग है, दृष्टा है, साक्षी है। और जब आवरण भंग हो जाएगा फिर हम ब्रह्म है, दृष्टा है, ये सोचना और अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर अभ्यास का कांटा भी चला जाएगा। देखो जो अहम ब्रह्मास्मि की साधना करते हैं या भावना करते हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते कृत उपासक, साधन भजन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि सोचते ब्रह्मानंद उनको आने लग गया, होते कृत उपासक, उन्होंने उपासना किया हुआ है। दूसरे होते अकृत उपासक, जिन्होंने उपासना किया नहीं, पहली भूमिका जिन्होंने बनाई नहीं, और सीधा उनको मिल गया अहम ब्रह्मास्मि का साधन। तो अहम ब्रह्मास्मि तो बोला, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बोलते जोर ब्रह्म पर नहीं है, जोर तो अहम पर रह गया। तो अहम पर जोर रहा भीतर से, लेकिन सुख तो ब्रह्म में है, तो ब्रह्म में तो गति हुई नहीं, फिर भी अहम ब्रह्मास्मि करके नियम कर्म कांड को छोटा देखने लग जाता है। वो आदमी फिर जो आया वो खा लिया, जो आया वो बोल दिया, जो आया वो कर लिया, इसमें सब आ गया। क्यों? कि अंकुश जो था नियम का संयम का, वो अंकुश अहम ब्रह्मास्मि के विचार से हट गया, बन गया स्वच्छंदी। तो खतरा भी हो गया, फिर भी अगर उसकी थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी पुण्य है, अथवा कोई थोड़ा भी महापुरुष उसके ऊपर देखरेख वाला है, तो उसको बचा देगा। अगर नहीं भी बचा तो उसके अंदर जो वासनाएं हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि करके वासनाएं तृप्त कर रहा है, और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि नहीं करके वासना तृप्त कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं जपता, और स्वेच्छाचारी तो करोड़ों लोग हैं। तो विवेकानंद बोलते जो आध्यात्मिक रास्ते चलता है फिर भी गलती करता है, तभी भी वो अन आध्यात्मिक व्यक्ति की अपेक्षा कुछ गलती कम होगी। अब ये नटू भाई झूठ नहीं बोलता है ऐसा मैं नहीं कहता, झूठ बोलता होगा जरूर, ग्राहकों को पटाते भी होंगे, किसी को कुछ किसी को कुछ ऐसा भी कहते होंगे, नहीं करते होंगे। तो इधर नहीं आते तो ज्यादा करते, इधर आने से कुछ तो कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि के करीब जो जाएगा ना, अहम ब्रह्मास्मि करते करते उसको ब्रह्म का सुख नहीं मिला, तो वासना का फोर्स उसको खींचेगा बेचारे, तो वासना के फोर्स में डूब भी जाएगा। तभी भी अहम ब्रह्मास्मि बोला हुआ तो अहम ब्रह्मास्मि वालों के जीवन चरित्र भी कभी कभी उसको याद तो आएगा, उनकी गाथाएं उनके वचन याद तो आएंगे, अंदर गोदा मारेगा। इनको MLA होना था, बहुत इच्छा थी, मेरे पास आके दोस्त बोलते हैं कि तुमको टिकट दिला दे MLA जा। मैंने कहा लगा कि इनका हित नहीं है, मैंने इनकार कर दिया, चलो जो बापू की आग में। इधर तो यूं करके गए, लेकिन अंदर की जो वासना थी, इच्छा जो थी, वो दिल्ली चले गए टिकट लेने को। और उधर बेचारे रहे, खर्चा किया, कहीं पोल्सन लगाया होगा, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में जख मारा, जख मारना है और क्या है। तो कई प्रकार के जख मारने के बावजूद मिली नहीं टिकट, फिर लगा के बापू की दू तो ये जो मानी हो तो अभी डंखवा मंडी पंच होने लगा। इधर आए, बापू ने कहा, बापू का नहीं माना, गए फिर नहीं मिली, तो डंख तो होने लगा कि बापू ने कहा नहीं, इतना तो डंखा, उतना तो शुद्धि हुआ, और जो इधर नहीं आते, इधर नहीं आने वाला जाता तो उसको तो डंख नहीं लगता। मानो कि इसने भी इन्होंने भी आज्ञा का तो पालन नहीं किया, लेकिन पालन नहीं किया वो डंकते डंकते हृदय शुद्ध तो हुआ, दो तीन बार आए पश्चाताप किया, अंगूर की पेटी ले आए राजी करने को। अभी सुनने की ताकत है, अभी टोकता हूं तो सह लेते सुन लेते, इधर आए तब ना, इधर नहीं आते तो इनके इनसे भी ज्यादा बदतर गंदे काम करने वाले लोग हैं। तो जो ईश्वर के रास्ते या गुरु के चरणों में पहुंचता है वो आदमी गलती करता वो देखेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो 50 गलती करता, अभी 40 किया, 30 किया, 20 किया, ऐसे गलती की मात्रा घटती जाए। भाव अभाव कुभाव ब्रह्म का चिंतन वशिष्ठ ने कहा। वशिष्ठ पूछा, पवित्र से पवित्र विचार कौन सा, अपवित्र से पवित्र मंत्र कौन सा? बोला पवित्र से पवित्र आत्म विचार है, और पवित्र से पवित्र अहम ब्रह्मास्मि मंत्र है। ब्रह्म तो हम ही है, नहीं माने तो भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है अणु परमाणु जिसकी सत्ता से है, जो सर्वव्यापक है, जो जिसके सिवाय एक तिल भी नहीं, उसका नाम ब्रह्म है। तो है ही है ब्रह्म। ओम ओम। फिर भी सीधे सीधे अपने मनमाना पढ़ने लग जाए, जपने लग जाए, श्रेष्ठ आचरण छोड़कर कुमार्ग पे चला जाए, ऐसे लोगों को चिमकी देने के लिए मैंने भी मारा जाता कि क्या बड़ा आया हम ब्रह्मास्मि बोलता दुष्चरित्र करता है, नरक में पड़ेगा, महानालायक है, ऐसा है। वास्तव में भी है, हम ब्रह्मास्मि नहीं कहता तभी भी तो नरक में तो पड़ता, लेकिन हम ब्रह्मास्मि कहता और फिर ये काम करता नरक में पड़ेगा ऐसा मैना देकर भी शायद उसका कोई अच्छा किरण हो जग जाए, इसलिए उनको मैना भी दे दिया जाता। मोटा संत थे आज, मोटा भगत रहा था, आश्रम में हो तो ना करो थे, आश्रम में ना रहे तो ना करते, आना थी डू करत, ये हमने खबर थे, कहता है मेरू मारी थे आश्रम में आओ तो ना करो। जय जय। देखो भागवत में आता है अजामिल जब तप पूजा करता था, ऐसा नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि वाले दुष्चरित्रवाद हो जाते, जब तप सेवा संयम वाले भी कभी कभी फिसल पड़ते, अच्छी वासना बुरी वासना दोनों होती है, फिर कभी बुरा का संग मिल गया तो वो भड़कती है, अच्छा का मिल गया तो वो भड़कती है। सादा सुदा संयमी सदाचारी ब्राह्मण था, अब वैसा का किसी आदमी के साथ चारा करते हुए उसने देखा, नीचे के केंद्र में आ गए, कथा लंबी है लेकिन अंत में यह हुआ कि उसने माँ बाप को दुख दिया, सताया, पिता की संपत्ति लाकर वैशा को रिझाया और वैशा को पत्नी बनाकर रह ली, उसपे 6-7 बच्चे भी हो गए, अजामिल पापी हो गया। भगवान का भक्त था, लेने गया था दर्भ कुश जंगल में और वहां चेष्टा देखकर पतन हो गया। फिर उसके बच्चे का नाम नारायण था, मरते समय यमदूतों ने पास डाला, उसके प्राण निकाल रहे थे तो अपने छोटे बच्चे में उसकी प्रीति थी तो नारायण 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 बोला, नारायण नारायण बेटे को बोलना था लेकिन पहले का जपा हुआ नारायण नारायण उसको फुराया। यम के दूत पास डाले उसके पहले हो भगवान के पार्षद आ गए, बोला ये पूर्ण निष्पाप नहीं है, निष्पाप नहीं है लेकिन अभी नारायण नारायण जप रहा है, पहले का दबा हुआ जो संस्कार है ना वो खुल गया, अब मृत्यु थी वो टल गई, 12 वर्ष उसकी आयु से बच गई, वैराग लग गया, योग साधना किया, जप किया और नारायण के सरेंडर हो गया, सदगति हो गई। हाँ तो बड़ा भगत, फिर वैशा को घर में रखा, उससे बच्चे पैदा किया, फिर भी किया हुआ नारायण नारायण उसका व्यर्थ नहीं गया, तो हम ब्रह्मास्मि व्यर्थ हो कर भी
वासना होती है सुख के लिए, जब तक निर्दोष सुख नहीं मिला तब तक आदमी बेचारा अपने अपने जगत में करता रहता है, जिनको निर्दोष सुख मिल गया उनको वासना तो नहीं सताती, इच्छा तो नहीं उनको, उनका संचित जो प्रारब्ध है वो तो ज्ञान अग्नि से जल जाता है, भावी कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि कर्तापन नहीं है, रहा वर्तमान का, वर्तमान का प्रारब्ध वेग से उनको भोग का प्रारब्ध है तो भोग, और त्याग का प्रारब्ध है तो त्याग में रुचि हो, वो प्रारब्ध प्रधान होगी, उनकी अपनी वासना प्रधान नहीं होगी, इच्छा अनिच्छा और परिच्छा तीन प्रकार का प्रारब्ध होता है, अपनी इच्छा तो बाधित हो गई ज्ञान अग्नि से, वासनाएं दग्ध हो गई, सेक गई, सेका हुआ बीज जैसे, सेकी सींग खाने के काम में आएगी बोने के काम में नहीं आएगी, ऐसे ज्ञान से वासनाएं उनकी ज्ञान अग्नि से सेक आ गई दग्ध हो गई। ज्ञानी भी कभी कभी तो आइसक्रीम खाने की इच्छा करे, रामकृष्ण आइसक्रीम खा रहे, लाओ आइसक्रीम लाओ, जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के अच्छे जाने माने व्यक्ति हो गए, कल्याण प्रेस का मैगजीन निकलता था कल्याण, सनातन धर्म के प्रेमी जानते उनको, भारत में प्रख्यात, जय दयाल गोविंद का और हनुमान प्रसाद पोजदार, वे जरा कर्म नियम में ज्यादा मानते थे, ज्ञान में भी उनकी गति नहीं थी, वो अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म बोलने वाले साधुओं की वो टीका टिप्पणी कर देते, सत्संग। एक दिन उन्होंने कहा कि 30 वर्ष गया इंद्र ब्रह्मा जी के भांडे मांजे, बर्तन मांजे, तब थोड़ा उपदेश मिला। फिर 30 वर्ष के रास्ते थोड़ा उपदेश मिला। ऐसे 3 बार 30-30 वर्ष, 90 वर्ष और फिर 10 वर्ष, फिर 8 वर्ष, 108 वर्ष ब्रह्मा जी की चाकरी किया, तब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान मिला इंद्र देवता। और आज दाल भात खाने वाले साधु गृहस्थी सब अपने का अहम ब्रह्मास्मि करने लग जाते। ये कैसे हो सकता? एक खेडूत बैठा था सभा में, उठ के खड़ा हुआ, बोले भाई जी 108 साल इंद्र ने सेवा किया तब उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ। आप बोलते हैं तो 108 साल देवताओं के कि मनुष्य के? देवताओं का तो 100 साल से तो उम्र ज्यादा होता नहीं, और 108 साल मैंने सेवा कैसे किया? बोलोगे मनुष्य के तो देवताओं के तो 108 घंटे, और मनुष्य के 108 साल उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं हुआ। हनुमान प्रसाद ने कहा आजकल के साधु सन्यासी अथाणा चाहिए, मिर्च का अथाणा चाहिए, सब्जी है चाहिए, चाहिए चाहिए मौजूद है, और बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, कटाक्ष कर दिया। तो अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले अभी इधर आए थे अहमदाबाद, वो बैठे थे, वो उस गीता प्रेस में काम करते थे पहले संपादक का, हनुमान प्रसाद मुख्य थे और वो लोग संपादक थे। खनानंद गए हनुमान प्रसाद के घर, बोला बहन जी भाई जी घर हैं? उसको हनुमान प्रसाद को भाई जी बोलते थे। हाँ घर हैं स्वामी। अच्छा भिक्षा दे दो, दाल रोटी सब्जी चावल जो कुछ घर में बनाया था भोजन दे दिया साधु को, भिक्षा दे दिया। अखंडानंद ने कहा कि ये सब तो दाल भात साग रोटी से वो पूड़ी पकौड़े है तो ठीक, हमको जब तक अचार नहीं होता तब तक भोजन में मजा नहीं आता। मिर्ची का अचार है, मिर्ची का सावा मिर्च संध्याल लीला मरचन होता हूँ छेद क्या कि बे मरचे आप मोटा मोटा जरा सारा दो मिनट ले ली। बोला भाई जी घर है ना, उनको बुलाओ। भाई जी आए, बोले भाई जी ये भिक्षा लिया मैंने लेकिन बिना आचार के मेरे को भोजन अच्छा नहीं लगता, और आपने फरमाया कि सब्जी चाहिए रोटी चाहिए अचार चाहिए मिर्च चाहिए ऐसा चाहिए चाहिए करते और अपने को ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं आपने फरमाया, तो भाई जी मैं पूछता हूँ कि कम वक्त दो हरी मिर्च हमारा ब्रह्म परमात्मा का अनुभव को छीन लेगा? जिसको एक बार अनुभूति हो गई ना वो वासना संयुक्त भी भासता है फिर भी निर्वासनिक, और जिनको अनुभूति नहीं हुई वो कस के तप के रहता है, माप का खाता है माप का पीता है मौन रहता है, फिर भी उसको मौन रहने वाला न खाने वाला तप करने वाला जीवत्व भाव मौजूद है। इसलिए नहीं खाती है तो इंद्रियां, भूखामरी करती है तो इंद्रियां, लेकिन वो अपने को थोप लेता कि मैंने भूख मरा किया। और जिसको हम ब्रह्मास्मि का तात्विक ज्ञान हो जाता है वो समझता कि खाने वाले खा रहे। इसलिए भोगता छता अभोगता, खाता छता अखाता, करता छता अकर्ता, पद में वो स्थिर होते। इसलिए ज्ञानवान महात्यागी होते, उसने तो पानी त्यागा है, रोटी त्यागा है, मिर्च त्यागा है, लहसुन त्यागा है, प्याज त्यागा है, आचार त्यागा है, अन्न त्याग दिया, फल तो खाता है। अज्ञानी ने तो फल अन्न जल सब को त्याग किया, इंद्रियों का त्याग किया, मन का त्याग किया, अंतःकरण का भी त्याग कर दिया। इसलिए महात्यागी है ज्ञानी, और महाभोक्ता है, क्योंकि ज्ञानी एक शरीर में भोग थोड़े भोगता है। ब्रह्मा जी होकर सृष्टि करने का सामर्थ्य मेरा ही सामर्थ्य है, इंद्र होकर भोग भोग रहा है, राजा महाराजाओं की सहाना नजर वो अपनी नजर समझता है, इसलिए महाभोक्ता है। महात्यागी, महाभोक्ता और महाकर्ता, ज्ञानी महाकर्ता है, एक अंतःकरण एक मन एक इंद्रिय से थोड़े करता है, हजारों अंतःकरण हजारों इंद्रियां जिसकी सत्ता से कर रही है, ज्ञानी उसको मैं मानता है तो महाकर्ता है। तो हे राम जी, मैं तुमको ज्ञानवान की दृष्टि करता हूँ, उसको जानकर तुम महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी हो जाओ। नहीं तो क्या रहेगा कि अंतःकरण की एक सात्विक वृत्ति में सात्विक आहार व्यवहार करेगा, थोप लेगा। माया जिसको अभिमानी बनाना चाहती है उसको त्याग में सुख दिखाती है। त्यागी बड़े अभिमानी होते मलुप्तन। माया जिसको अभिमानी बनाना चाहती है उसको त्याग में सार दिखाती है, और जिसको भोगी बनाना चाहती है उसको विषय में सुख दिखाती है। जिसको भोगी बनाना चाहती है उसको विषय में सुख दिखाती है, जिसको अभिमानी बनाना चाहती है उसको त्याग में सुख दिखाती है। जिसको भ्रम जाल में घुमाना चाहती है उसको स्वर्ग में सुख दिखाती है। जिसको परमार्थ के जीवन मुक्ति के आनंद से वंचित रखना चाहती है उसको योग में सुख दिखाती है। जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद से वंचित रखना चाहती उसको योग में सुख दिखाती। जिसको विक्षेप में डालना चाहती है उसको संसार के विषयों का चिंतन में सुख दिखाती, और जिसको विक्षेप से बचाना चाहती उसको योग में सुख दिखाती। लेकिन जिसके शरणागत हो जाती है उसको कहीं सुख नहीं दिखाती, उसमें समा जाती, वो अरिहंत है, वो ज्ञानी है, महाकर्ता महाभोक्ता महाज्ञानी। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल रहे, बड़ी मुश्किल से झूठ बुलवाया जा रहा आधा, फिर भी वो सत्वगुण में है, धर्मात्मा है, महात्मा नहीं। अब कृष्ण धर्मात्मा नहीं है, महात्मा नहीं, परमात्मा है। झूठ भी बोले, चोटला भी खींचा, दीका भी दिखाया, नरोवा कुंजरवा भी किया, लेकिन अपने में कर्तृत्व कृष्ण को नहीं है, कर्तृत्व नहीं, उसको राग द्वेष नहीं है। कृष्ण ने कहा, उतरा तेरा पुत्र मर गया और तेरे को दुख नहीं होता, इतनी समता है तो देख अब मेरी समता। कौरवों का और पांडवों का दूत बनकर गया, तब से लेकर युद्ध में शस्त्र न उठाने की कसम खाने के बावजूद शस्त्र उठाए। दुर्योधन को माँ ने वरदान दिया था कि मेरे सामने दिगंबर होके आ जाएगा, मेरी नजर पड़ेगी तब तो अजय हो जाएगा, तेरे को अस्त्र शस्त्र नहीं लगे। तो मैंने उसको पता के कि माँ के आगे इतना आखला नंगा होके जाता है, कम से कम थोड़ा सा कोपिन तो पैर, और कोपिन पैरा के वो हिस्सा कच्चा करा दिया, और फिर भीम को बोला कि वहीं मार, सफाई करा दी। ये सब चालबाजी मैंने करते हुए भी आज तक मैंने कौरवों का द्वेष न किया हो तो लो, और पांडवों का राग न किया हो तो, कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न हो और पांडवों के प्रति मेरा राग न हो, मेरा चित्त अपने समता स्वभाव में मस्त हो, अगर ये बात सच्ची है तो ये मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए, बालक जिंदा हो गया। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके आगे प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से ढका हूँ। मूड लोग मुझे जब समझते हैं कि मैं जन्मा हूँ इतना हूँ, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ। गीता का सातवां अध्याय का 23वां-22वां श्लोक ऐसा कुछ। जिनको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई वो फिर अंतःकरण इंद्रिय और कर्तृत्व उससे एकदम ऊपर उठ जाते। योगी अंतःकरण को शुद्ध करता है, भक्त अंतःकरण में भावना भरता है, त्यागी अंतःकरण में त्याग भरता है,
भोगी अभागा अंतःकरण में भोग भरता है, लेकिन ज्ञानी न भरता है न निकालता है, अंतःकरण को अंतःकरण का जानकर खुद में आराम कर लेता है।